मैं राजेश। दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मैनर्स के बारे में कुछ बातें करने की सोच रहा हूँ। मैनर्स, ये मैनर्स क्या हैं? उर्दू में इसे हम कहते हैं तमीज़, हिंदी में हम इसे कहते हैं शिष्टाचार, लेकिन अंग्रेजी में यह शब्द ज़्यादा प्रचलित है, मैनर्स। हालांकि जब कुछ लोगों से मैनर्स के बारे में बात होती है तो वे इसके विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज उनके ऊपर थोपी जा रही है। भाई, मैं जैसा हूं वैसा हूं, खत्म हो गई बात। मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में हूं, मेरी जैसी भाषा है वैसी ही क्यों नहीं रहनी चाहिए, मैं उसे आर्टिफिशियल क्यों बनाऊं? मैं जिस तरह के कपड़े पहनता हूं, जिस तरह से उठता बैठता हूं, जिस तरीके से मैं चलता हूं, जिस तरह से मैं भोजन करता हूं, जिस तरह से मैं दूसरों से बातचीत करता हूं, ये मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है और मेरी यह ओरिजिनलिटी बनी रहनी चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। तो आप क्यों जबरदस्ती के मैनर्स मुझ पर थोप रहे हैं? तो वो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सच में अपनी इन चीजों पर विचार करते हैं और इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं हीनता के बोध से वो ग्रसित भी होते हैं कि यार, हमारे पास वो मैनर्स नहीं है जो उसके पास है। देखो, वो कितने अच्छे से बात करता है, दूसरों को एकदम तुरंत प्रभावित कर देता है, लोग भी उसके बारे में बात करते हैं, काश कि यह मेरे साथ भी होता, अब काश कि मैं ऐसा कर सकता। दोस्तों, अब पहली बात तो देखिए, हम जैसे भी हैं, फिलहाल हम जो भी हैं, वो अपने वातावरण की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। न कोई शिकायत की बात है, कुछ भी शिकायत की बात नहीं है। मेरा अपना परिवार है, जिस परिवार में मैं पला बढ़ा, उस तरह के शिष्टाचार मुझे आते, सो कॉल्ड मैनर्स कह लीजिए, कि मैंने अपने घर वालों को जिस तरीके से बात व्यवहार करते देखा वही मेरे अंदर आ गया, जो भाषा मैंने सुनी उसी तरह की भाषा मेरे अंदर आ गई, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, उसी तरह का मैं व्यवहार करता हूं, उसी तरह का मेरा आचरण है। घर से निकल करके फिर मैं स्कूल में गया, वहां पर फिर मुझे कुछ सुनने जानने को मिला, तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होते होते अब मैं इस स्थिति में आ गया हूं कि मेरा अपना एक व्यक्तित्व बन चुका है, उसका निर्माण हो चुका है और मैं उसी के अनुसार काम कर रहा हूं। ये एक पक्ष हो गया, यहां तक ठीक है, आप बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन यहां मेरी एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस है। सिंसियर एडवाइस ये है कि ठीक है, जब तक चीजें आपके साथ घटित होती रही, क्योंकि आप निरीह थे, आप रिसीवर एंड पर थे, आप केवल लेने वाले थे, आपका कोई जोर नहीं था, तो आप चीजें लेते चले जा रहे थे, लेते चले जा रहे थे, अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते पा रहे थे मान लीजिए। लेकिन अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जब आप प्योरली रिसीवर नहीं हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप देने वाले भी बन गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब दो चीजें बदल चुकी हैं, इन पर आप विचार कीजिएगा। पहली जो बात है वह तो यह कि अब आप उस तरीके के रिसीवर नहीं रह गए हैं कि भैया जो चीज दो मैं उसे उसी रूप में लेने के लिए बाध्य हूं। पहले हम इसी रूप में होते हैं, हम ज्यादा उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, और क्या हमारे लायक है क्या हमारे लायक नहीं है इसकी समझ भी हम में नहीं होती, तो हमें जो अच्छा लगता है हम उसे लेते चले जाते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व में रचता बसता चला जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब आप काफी कुछ समझदार हो गए हैं, आपके पास ज्ञान है, अपने हित अहित को समझते हैं, समाज को जानते हैं, अपनी चेतना को थोड़ा सतर्क कीजिए, डम मत बने रहिए, दिमाग को बिल्कुल मौन मत कर दीजिए, उसे खोलिए, विचार कीजिए कि अच्छा, ये चीज मुझे मिल रही है तो ये मेरे लायक है या नहीं है, और अगर मेरे लायक नहीं है तो फिर आप अपने अंदर ऐसी हिम्मत जुटाइए कि आप उसे ठुकरा सके, मना कर सके, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब आपके व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी आपके अपने हाथ में आ चुकी है, और चूंकि अब अपने हाथ में आई है तो आपको दो काम करने ही चाहिए। पहली बात कि जो मैं नहीं चाहता उन्हें मैं ठुकरा दूं, और दूसरा जो मैं चाहता हूं उन्हें मैं लेकर आऊं। याद रखिए कि आपको कोई देने नहीं आएगा, कोई देने नहीं आएगा, किसी को आपकी नहीं पड़ी है कि भैया इसको संभालो, इसको सुलझाओ, इसको संवारो, नॉट एट ऑल, कोई आपको देने नहीं आएगा, आपको लेना पड़ेगा या लेने जाना पड़ेगा। आज तक कोई भी कुआं कहीं भी सुनने में नहीं आया कहानी तक में कि वो प्यासे के पास चलकर आया हो, आपको जाना पड़ेगा, गांठ बांध लीजिए, आपको जाना पड़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए, अपने व्यवहार का विश्लेषण कीजिए, अपने आचरण का विश्लेषण कीजिए, जिसमें आपके बोलने का तरीका, चलने का ढंग, भोजन करने का तरीका, बातचीत करना, दूसरों से मिलना, इन सारी छोटी छोटी चीजों का एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें से छांटिए कि मुझे किन किन चीजों में सुधार करना है, किन किन बातों को करेक्ट करना है। नोट कीजिए और फिर उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा दोस्तों, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। समाज का अपना एक सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज के गुलाम बन जाइए, लेकिन समाज के बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो बेहतर हैं और बेहतरी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए किसी संस्थान में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, सरकार में जा रहे हैं, सरकारी ऑफिस में बात करने जा रहे हैं, आप दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन जो मैनर्स हैं, मैनर्स हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के नागरिक को अच्छे लगते हैं। और जो मैनर्स हैं वो केवल सामने वाले को ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि वो आपकी अपनी पहचान भी बनाते हैं और सामने वाले पर आपका प्रभाव भी डालते हैं। यदि आप अपने किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं और आपको वहां के मैनर्स मालूम है कि मैं जाऊं पहले दरवाजा खटखटाऊं कि वो अंदर आने के लिए कहे, फिर वो अंदर आने के लिए कहेगा तो फिर मैं उसका अभिवादन करूं, सर सर करके मैं बात करूं, बहुत विनम्रता से मैं बात करूं, अपना संतुलन बनाए रखूं, मेरे बैठने का ढंग क्या होगा अगर वो मुझे बैठने के लिए कहता है तो, या मेरे खड़े होने का तरीका क्या होगा अगर मुझे बात करनी खड़े खड़े ही है तो ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। कुछ समय तक आपको ये मुश्किल काम लगेगा क्योंकि अभी आप नए नए की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा, ये आपकी आदतें बन जाएंगी। और जैसे ये आदतें बन गई, मान करके चले कि वही आप बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको कोशिश होनी चाहिए कि मैनर्स पर काम करें। आप अपने को संपूर्ण मत मान लीजिए, आप अपने को पूरी तरह से सही मत मान लीजिए, कमियां कुछ न कुछ किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी मायने में बनी ही रहती हैं। उन पर काम कीजिए, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। चट्टान है, चट्टान पड़ी हुई है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन अगर मूर्ति बननी है तो उसी चट्टान से मूर्ति बन जाती है। और वो कैसे मूर्ति बनती है? क्योंकि खरोच खरोच करके उसके भद्देपन को हटा दिया जाता है और एक अच्छा स्वरूप उसी में से निर्मित हो जाता है। ऐसा हम सबके साथ भी हो सकता है, ऐसा हमें करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।